नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चक्की बनीखेत चंबा भरमौर सड़क पर तटबंधों की मरम्मत के लिए 93,55,00,000 रुपए को दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों सहित जवाब देगी सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राजभवन का घेराव करने और प्रधानमंत्री का पुतला जलवाने की घटना को बताया शर्मनाक। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा, कई क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 154A के तहत चंबा जिले के चक्की बनीखेत चंबा भरमौर सड़क के संवेदनशील स्थानों पर तटबंधों की विशेष मरम्मत के लिए 93,55,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में बताया कि मॉनसून के दौरान इस राजमार्ग को बार बार हो रहे नुकसान को देखते हुए इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाया गया था। उन्होंने कहा कि योजना को पूरी सावधानी के साथ कार्यान्वित किया जाएगा और सभी कार्य परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी तकनीकी दिशा निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 154A पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से धर्मशाला के समीप तपोवन में शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि ये सत्र अब तक का सबसे बड़ा शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और इसे लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों सहित जवाब दिया जाएगा।
विपक्ष ने अपना कार्य करना है और तभी सभी बातों को देखते हुए कि विपक्ष अपना सारा पक्ष विधानसभा के अंदर रखे, जहां आपका मॉनसून सेशन भी आज तक का सबसे लंबा सेशन था, इसी तरह से विंटर सेशन भी लगभग कोई 8-9 दिन का है, वो अपनी बातें विधानसभा के अंदर रखे और सरकार भी हर तरह से तैयार रहेगी और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सारी सूचना उनको उपलब्ध करवाई जाएगी।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एचपी शिवा परियोजना किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ साथ बागवानी क्षेत्र में नए अवसर प्रदान कर रही है। सुंदरनगर की खुराहल पंचायत में आज परियोजना से जुड़े नए क्लस्टर में चल रही गतिविधियों का जायजा लेने के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी मंत्री ने एचपी शिवा परियोजना का क्रियान्वयन कर रही कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्धारित लक्ष्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना से किसानों व बागवानों को आय के स्थायी साधन प्राप्त हुए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य में अलग अलग स्थानों पर हो रही गोलीबारी की घटनाओं को माफिया राज की देन बताया है। कांगड़ा जिला के देहरा में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों और बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ भाजपा 4 दिसंबर को धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की शांति, संस्कृति और कानून व्यवस्था को बचाने के लिए भाजपा निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। भारतीय मजदूर संघ ने 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने का स्वागत किया है। मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि यह आजादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिक सशक्त होंगे और अनुपालन आसान होगा। भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष डॉ दीपक जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और नई संहिताओं के लागू होने से अब उनका न्यूनतम वेतन पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश के साथ साथ शिमला ग्रामीण के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। शिमला जिले के जुब्बड़हट्टी में आज एक मेले के दौरान उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों का समान विकास सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने बताया कि जाठिया देवी के समीप एक नया शहर बनाने की योजना है, जिसके लिए करीब 2,600 बीघा भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य जारी है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इस परियोजना पर करीब 1,300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं द्वारा राजभवन घेराव करवाने और प्रधानमंत्री का पुतला जलवाने की घटना को शर्मनाक बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत के चलते कांग्रेस बेहद कुंठित है और ये घटना भी इसी कुंठा का परिणाम है। जयराम ठाकुर ने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में संविधान पर इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजभवन की एक गरिमा है और सरकार को इसे बनाए रखने की जरूरत है। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सोलन में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में उन्होंने योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर भी बल दिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य को भरपूर मदद मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पा रही है।
केंद्र के द्वारा भरपूर मदद की जा रही है और केंद्र हर क्षेत्र में, चाहे सड़कें हैं, चाहे पीने का पानी या इलेक्ट्रिसिटी की बात, आरडीएस प्रोजेक्ट चला है, जल जीवन मिशन में बहुत सारा पैसा केंद्र के द्वारा दिया गया। पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र ने अभी हिमाचल प्रदेश को 2200 करोड़ रुपया सबकृत किया है और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी उसमें बहुत सारी सड़कें आई हैं। फेज 3 में भी बहुत सारी सड़कें, लगभग 2600 करोड़ रुपया उस समय हिमाचल प्रदेश को मिला था।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधारात्मक कदम उठा रही है, जिसके चलते हिमाचल राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में 5वें स्थान पर पहुंचा है। बिलासपुर जिले के राजकीय विद्यालय भगेड़ के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार का आगामी लक्ष्य हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता से जोड़ना है, जिसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों से मोबाइल का सीमित उपयोग करने सहित खेलकूद, योग, प्राणायाम और पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने का आह्वान किया। ऊना जिला को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन एक व्यापक जन जागरूकता आंदोलन के साथ आगे बढ़ रहा है। इस उद्देश्य से तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण के तहत पंचायतों में तंबाकू मुक्त गांव बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2 अक्टूबर से 60 दिनों तक चलने वाला नशा मुक्त युवा अभियान 3 अब ऊना जिला में आंदोलन का रूप ले चुका है। जिला प्रशासन ने तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, जबकि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला के 30 गांवों को 100% तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षण संस्थानों में बच्चों द्वारा नशे और तंबाकू सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि लोक संपर्क विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटकों और गीत संगीतों के माध्यम से जगह जगह तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों बारे प्रचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थानों में भी तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों बारे लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के 3 क्षेत्रों का तापमान माइनस में दर्ज किया गया है, जबकि कई बड़े शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। तापमान में भारी गिरावट के चलते जनजातीय इलाकों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने और तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चक्की बनीखेत चंबा भरमौर सड़क पर तटबंधों की मरम्मत के लिए 93,55,00,000 रुपए को दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों सहित जवाब देगी सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राजभवन का घेराव करने और प्रधानमंत्री का पुतला जलवाने की घटना को बताया शर्मनाक। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा, कई क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त। नमस्कार।